بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منشی بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کی دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है, फरवरी की 6, रजब की 25 और बहमन माह की 17 तारीख। कार्यक्रम की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम कार्यक्रम में विश्व समाचार पेश करेंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा, उसके उपरांत हम आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे स्वतंत्रता प्रभात। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इब्राहिम रईसी ने कुछ मुस्लिम देशों के क्रियाकलापों की निंदा की है। लाल सागर में अमरीका और ब्रिटेन के जहाज पर हमला हुआ है। ज़ायनी शासन में नसरुल्ला को बहुत दिलेर नेता माना जाता है। गजा युद्ध को रुकवाने के लिए अमरीकी छात्र हड़ताल कर रहे हैं। और अब आप मरियम मिर्ज़ादी और गायम रिज़वी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति ने दुनिया के देशों को ज़ायोनी शासन से दूर करने को इस्लामी गणतंत्र ईरान की बुनियादी नीतियों में से बताया। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम देशों द्वारा इस नीति की उपेक्षा से इस्लामी जगत को भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अपराधी ज़ायोनी शासन, जिसने हमेशा विद्रोह और साजिश रचकर मुसलमानों की प्रगति को बाधित करने की कोशिश की है, कभी भी इस्लामी देशों का मित्र नहीं हो सकता और न ही मुस्लिम देशों के विकास और प्रगति में उसकी कोई रुचि है।
लाल सागर में अमरीका और ब्रिटेन के जहाजों पर यमन की सेना ने हमला किया है। अल जजीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यमन की सेना के प्रवक्ता ने आज लाल सागर में अमरीका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमले के बारे में बताया है। इसी बीच ब्रिटेन के व्यापार संगठन की ओर से घोषणा की गई है कि लाल सागर में यमन के अलहुदैदा प्रांत से 57 किलोमीटर पश्चिम में ब्रिटेन के जहाज पर हमला किया गया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी ने भी बताया कि इस देश के एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। दूसरी ओर यमन के अल मसीरा टीवी चैनल ने इस देश के सादा प्रांत में अमेरिका और ब्रिटेन के हमले की सूचना दी है।
गजा युद्ध की शुरुआत के बाद से हिजबुल्ला ने 961 ऑपरेशन के दौरान मिसाइलों और ड्रोन विमानों से इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला ने घोषणा की है कि गजा युद्ध की शुरुआत के बाद से इसराइल के खिलाफ 961 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों में खासकर ज़ायोनी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کے بعد سے ہی غزہ میں پرتیرودھ آندولن پر دباؤ کو کم کرنے اور ادھکانش اویدھ ادھیکرت کھیتروں میں زائونی سینکوں کو سینک ٹھکانوں پر ویست کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف لگاتار حملے کر رہا ہے۔
سماچار سوتروں نے زائونی شاسن کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل حملوں کی سوچنا دی ہے۔ الجزیرہ نے سوموار کو زائونی شاسن کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل حملوں کی سوچنا دی اور کہا کہ لبنان کے دکشن سے اپر جلیلی شتر میں زائونی شاسن کے ٹھکانوں کی اور 5 راکٹ اور میزائل داغے گئے۔ زائونی شاسن کے میڈیا نے بھی لبنان سے اسرائیلی سینک ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملوں کی تیورتا کی اور اشارہ کیا اور سویکار کیا ہے کہ رویوار کو لبنان کی دھرتی سے لگ بھگ 15 آپریشن کیے گئے اور اویدھ ادھیکرت کھیتروں کے اتر کالونیوں میں 18 بار الارم بجایا گیا۔ لبنان کے اسلامی پرتیرودھ کے وار میڈیا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ نے 8 اکتوبر یعنی طوفان الاقصی آپریشن کے اگلے دن کے بعد سے 4 فروری تک اسرائیلیوں کے خلاف 961 الگ الگ آپریشن انجام دیے ہیں۔
زائونی حلقوں میں یہ بات عام ہے کہ ورتمان سمے میں حزب اللہ کے نیتا دنیا کے سب سے پربھاوشالی اور دور درشی نیتا ہیں۔ زائونی شاسن کے ایک راجنیتک ٹیکہ کار یہودا نے حزب اللہ کے مہا سچیو کو نہ کیول عرب جگت بلکہ پوری دنیا میں سب سے نیتا مضبوط بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سید حسن نصر اللہ نے بے دھڑک اسرائیل کو چیلنج کیا ہے۔ اس وشلیشک کا یہ بھی کہنا ہے کہ حزب اللہ کے مہا سچیو انیہ دشمنوں کی تلنا میں اسرائیل کی ادھک پہچان رکھتے ہیں۔ انہوں نے زائونیوں کے سرکشا حلقوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ حسن نصر اللہ نے ابھی تک کیول اپنی 5% شمتا کا ہی پریوگ کیا ہے، کنتو ابھی بھی ان کے بھیتر کھیل کو پلٹنے کی یوگیتا پائی جاتی ہے۔
فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس کی سینیہ شاخہ عز الدین القسام بریگیڈ اسرائیل کے ایک اور جاسوسی ڈرون کا شکار کرنے میں سفل رہا ہے۔ شاب سماچار ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس کی سینیہ شاخہ عز الدین القسام بریگیڈ کے سنگھرش کرتاؤں نے جاسوسی ڈرون اسکائی لارک کو اپنے نینترن میں لے لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اس اسرائیلی ڈرون کو ایسی حالت میں اپنے نینترن میں لیا جب وہ دکشن میں خان یونس شہر کے پشچم میں ایک ٹوہی مشن پر تھا۔ گیادر کی 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کے بعد سے فلسطینی پرتیرودھ سنگٹنوں نے کئی اسرائیلی ڈرونوں پر نینترن کیا ہے۔
امریکہ میں براؤن یونیورسٹی کے چھاتروں نے غزہ میں یدھ ویرام کے لیے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ بھوک ہڑتال پر بیٹھنے والے چھاتروں میں یہودی چھاتر بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا نے سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان چھاتروں نے فلسطین میں مانواادھیکاروں کے الگھن میں شامل کمپنیوں کو سماپت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ککشاؤں کے انشچت کالین بہشکار کی گھوشنا کی ہے۔ چھاتروں نے اسرائیل سمرتھت نگم کو بھی ختم کرنے کا آہوان کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے وبھن شہروں میں فلسطینیوں کے سمرتھن میں اور دمنکاری زائونی سرکار کے بربر اپرادھوں کی نندا میں لگاتار بڑے پیمانے پر پردرشن ہوتے آ رہے ہیں۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ مصر نے سمبندوں کو سامانیہ بنانے کے سمجھوتے کو ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹ نے بتایا کہ مصری ادھیکاری غزہ پٹی میں اسرائیلی سینا کے آکرامک وستار سے ناراض ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر اس قدم سے سینا مرستل میں فلسطینی شرنارتھیوں کا آنا شروع ہوتا ہے تو قاہرہ اسرائیل کے ساتھ سمبندوں کے سامان کرن کے سمجھوتے کو رد کر دے گا۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے انوسار اسرائیل اخبار اسرائیل ہیوم نے سوموار کو بتایا کہ قاہرہ نے سمبندوں کو سامانیہ بنانے کے لیے تیل آویو کو سمجھوتے کو نلمبت کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس اسرائیلی میڈیا نے مصر کے کئی سروتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ چیتاونی کا کارن یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اتری مصر میں سینا مرسل میں استھانانترت کیے جانے کی سمبھاونا ہے۔ نام نہ چھاپنے کی شرط پر سوتروں نے بتایا کہ مصر کے ادھیکاری سینا مرسل میں سیما پار کرنے والے ہزاروں فلسطینیوں کے بارے میں چنتت ہے۔ یہی کارن ہے کہ قاہرہ رفا سیما پاس تک یدھ کے وستار کا ویروت کر رہا ہے۔
نکاراگوا کی سرکار نے ایک آدھیکارک بیان جاری کر کے برٹین، جرمنی، ہالینڈ اور کینیڈا کی شکایت کی ہے۔ نکاراگوا کا ماننا ہے کہ یہ دیش فلسطینیوں کے جاتی صفائی میں بھاگیدار ہیں۔ اس دیش نے ان چار دیشوں سے مانگ کی ہے کہ وہ اویدھ زایونی شاسن کے لیے ہتھیاروں اور سینی تکنیک اپکرنوں کی آپورتی چھوڑ دیں۔ نکاراگوا کے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انتراشٹری نیایالے نے 26 جنوری کے اپنے آدیش میں زایونی شاسن کو غزہ میں فلسطینیوں کے جن سنہار کا دوشی مانا تھا۔ ایسے میں اسرائیل کو فلسطینیوں کے نرسنہار کو رکوانے کے کام کو سنشچت بنوانا چاہیے۔ اس سے پہلے دکشنی افریقہ نے ابھوتپورو قدم اٹھاتے ہوئے انتراشٹریہ نیایالے میں اسرائیل پر آروپ لگایا تھا کہ وہ غزہ میں جن سنہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد نکاراگوا کی سرکار کی اور سے یہ مانگ کی گئی کہ برٹن، جرمنی، ہالینڈ اور کینیڈا جیسے دیش فلسطینیوں کے جن سنہار میں اویدھ زایونی شاسن کے ساتھ بھاگیدار ہیں۔
راشٹر سنگھ میں عراق کے پرتندھی نے کھیتر میں یدھ کے وستار کے پرتی چیتاونی دی ہے۔ سنیکت راشٹر سنگھ میں عراق کے پرتندھی عباس کاظم نے سرکشا پریشد کے بیٹھک کے دوران عراق اور سیریا میں امریکہ کے حالیہ حملوں کی کڑی نندا کی۔ انہوں نے کہا کہ پشچمی ایشیا کا سنکٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ عراق کے پرتندھی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دیش کو راجنیتک حساب چکانے کا کیندر نہیں بننے دیں گے۔ اسی بیچ راشٹر سنگھ میں سیریا کے استھائی پرتندھی نے کہا کہ اپنے گھٹکوں کی سرکشا کے ادیش سے امریکہ کا ان کے دیش پر حملہ اسرائیلی حملوں کا پورتی کرتا ہے۔ انہوں نے سرکشا پریشد سے اس کی نندا کرنے کی مانگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سرکاریں سیریا کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرتی آ رہی ہیں، وہ غیر قانونی سینیہ گٹھ بندھن بنا کر اتکرمن کرتے رہتے ہیں۔ سیریا کے پرتندھی کا کہنا تھا کہ حملوں کے لیے امریکی سرکار جو اوچت پیش کرتی ہے اس کو ہم کسی بھی صورت میں سویکار نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شوتاو، راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غزہ میں موجود یدھ کا ذکر کرتے ہوئے مسلم دیشوں دوارا زیونی شاسن کو نرنائک جھٹکا دینے کا آہوان کیا۔ شوتاو، جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ زیونی سرکار کے حملے فلسطین کی نردوش جنتا کے خلاف یتھاوت جاری ہیں، اور ان حملوں میں اب تک 27,000 سے ادھک نردوش فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اتراکھنڈ کی سرکار نے آج منگلوار کو ودھان سبھا میں سمان ناگرک سہنتا ودھیک 2024 پیش کر دیا۔ اس ودھیک کے پارت ہو جانے اور راجیہ پال کی منظوری ملنے کے بعد قانون بن جائے گا، اور اتراکھنڈ یو سی سی لاگو کرنے والا بھارت کا پہلا راجیہ بن جائے گا۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے غزہ میں موجود یدھ کا ذکر کرتے ہوئے مسلم دیشوں دوارا زیونی شاسن کو نرنائک جھٹکا دینے کا آہوان کیا۔ سواتنترتا پربھات اور 19 بہمن 1357 ہجری شمسی کو وایو سینا کے کرمیوں کی اور سے سورگیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پرتی نشٹھا کی اتیاسک پرتیجا کی ورش گانٹھ کی پورو سندھیا پر وایو سینا کے جوانوں اور کمانڈروں کے ایک گٹ نے سپریم لیڈر سے ملاقات کی. سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی اختر عباس.
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے غزہ میں موجودہ یدھ کا ذکر کرتے ہوئے مسلم دیشوں دوارا زائن شاسن کو نرنائک جھٹکا دینے کا آہوان کیا ہے. سوتنترتا پربھات اور 19 بہمن 1357 کو وایو سینا کے کرمیوں کی اور سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پرتی نشٹھا کی ایتیہاسک پرتیجھا کی ورشگانٹھ کی پورو سندھیا پر وایو سینا کے جوانوں اور کمانڈروں کا ایک گروپ سپریم لیڈر سے ملا. اس ملاقات میں ورشٹھ نیتا نے وبھن وشیوں کا الیکھ کیا جن میں غزہ یدھ بھی شامل تھا. غزہ یدھ کے سمبندھ میں سپریم لیڈر کے بھاشن میں پہلا بندو اس یدھ میں مانویہ تراسدیوں کی گھٹنائیں تھیں. فلسطین کے سواستھ منترالے دوارا گھوشت نوینتم آنکڑوں کے انوسار غزہ پٹی کے خلاف 122 دنوں کے زائن یدھ میں 27,478 لوگ شہید ہوئے اور 66,835 لوگ گھائل ہوئے, جبکہ لگ بھگ 7,000 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں اور ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. دوسرے شبدوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس یدھ میں اوسطاً 225 لوگ مارے گئے اور 542 لوگ گھائل ہوئے. یہ آنکڑا غزہ پٹی میں زائنی شاسن کے نرسنہار کا ایک اسپشٹ ادھارن ہے. حالانکہ اس اپرادھ کے باوجود مسلم دیشوں نے زائنی شاسن کے اپرادھوں کو روکنے کے لیے کوئی گمبھیر کاروائی نہیں کی, اور یہ نشکریتا غزہ میں اس نرسنہار کے جاری رہنے کا ایک مہتوپورن کارک بھی ہے. اس یدھ کو لے کر مسلم سرکاروں کی چپی اور نشکریتا کی وجہ سے اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے سوموار کو اپنے بھاشن میں مسلم دیشوں سے کہا کہ وہ زائن شاسن پر نرنائک پرہار کے لیے اپنی سرکاروں پر دباؤ ڈالیں. واستو میں اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کا یہ بیان غزہ میں زائنی شاسن کے اپرادھوں کے بارے میں مسلم سرکاروں کے درشٹی کوڑوں کی آلوچنا کرتا ہے. اس سمبندھ میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے اس بات پر زور دیا کہ راشٹروں کے پاس سرکاروں پر دباؤ ڈالنے اور انہیں زائنی شاسن کا سمرتھن بند کرنے کے لیے مجبور کرنے کی شمتا پائی جاتی ہے. مسلم دیشوں نے غزہ کے خلاف زائنی شاسن کے اپرادھوں کو سماپت کرنے کے ساتھ غزہ کی جنتا کے لیے مسلم دیشوں کے سمرتھن کی مانگ کرتے ہوئے کئی بار پردرشن کیے. پچھلے 4 مہینوں کے دوران کئی لاکھ یمنی جنتا کا مارچ اسی پریدھی میں ہوا. حالانکہ مورچوں سے زائنی شاسن کو کوئی نرنائک جھٹکا نہیں لگا اور اس شاسن پر غزہ کے خلاف اپرادھ کو روکنے کا دباؤ نہیں پڑا. دوسرے شبدوں میں سروچ نیتا نے کہا کہ نرنائک جھٹکے کا مطلب اسلامی دیشوں اور زائن شاسن کے بیچ آرتھک سمبندوں کو توڑنا ہے. غزہ یدھ کے دوران یہ بات ظاہر ہو گئی کہ زائن شاسن کی دکھتی رگ آرتھک مدعا ہے, کیونکہ جہاں یدھ میں بہت ادھک لاگت آتی ہے وہیں مسلم دیشوں کے ساتھ آرتھک سمبندوں کو توڑنے سے اویدھ ادھکرت کھیتروں میں لوگوں پر دباؤ بھی پڑ سکتا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
شوتاؤ, جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ زانوی سرکار کے حملے فلسطین کی نردوش جنتا کے خلاف یتھاوت جاری ہیں, اور ان حملوں میں اب تک 27,000 سے ادھک نردوش فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. پر امریکہ اور اسرائیل ان حملوں کا اوچت درشانے کے لیے پشچم ایشیا میں بھی یمن, عراق اور سیریا پر حملے کر رہے ہیں. سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی مسام عباس.
امریکہ, اسرائیل اور ان کے سہیوگی پشچم ایشیا میں اسرکشا اور استھرتا کا مکھیہ کارن ہیں, جبکہ پرتیرودھی سموہ اور سوتنتر سرکاریں مدھیہ پور اور لال ساگر میں امریکی اسرائیلی گٹھ جوڑ کا مقابلہ کر رہی ہیں. قبضے والے علاقوں میں الاقصی طوفان آپریشن کے بعد क्षेत्रीय प्रतिरोधी बल ज़ायोनी शासन और उसके समर्थकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस स्थिति में यमनी सेना ने भी फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समूहों और लोगों का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप किया है। इस देश की नौसेना कब्जे वाले क्षेत्रों की ओर जहाजों की आवाजाही को रोक रही है और अमेरिकी हमलों का भी जवाब दे रही है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान गजा में फिलिस्तीनी राष्ट्र के प्रतिरोध के समर्थन में यमनी सेना ने लाल सागर और बाबुल मंदब स्ट्रेट में इसराइली, अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को निशाना बनाया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हालिया हफ्तों में यमन में कई हमले किए हैं। ये हमले फिलिस्तीनी राष्ट्र के प्रतिरोध का समर्थन करने के कारण हुए हैं। सऊदी अरब ज़ायोनी शासन के समर्थन में और यमन के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें शुरुआत में कई पश्चिमी देश शामिल हुए थे, लेकिन बाद में इससे कई देश बाहर निकल गए। इस गठबंधन ने यमन पर कई बार हमले किए हैं। यमन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके इस बात पर जोर दिया कि लाल सागर पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन हम यमन के खिलाफ आक्रामकता के सामने चुप नहीं रह सकते और गजा में फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्षेत्र में नए राजनीतिक घटनाक्रमों से पता चलता है कि इस्लामी देश फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ जुड़ रहे हैं और अमरीका और उसके लक्ष्यों से दूरी बना रहे हैं। सऊदी अरब सहित क्षेत्र की सरकारों ने अमरीकी गठबंधन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। कई यूरोपीय सरकारों ने भी अमेरिका के नेतृत्व वाले नौसैनिक गठबंधन में सहयोग करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे अमरीकियों की तरह गजा में ज़ायोनी शासन के अपराधों में शामिल होना नहीं चाहते हैं। इस बीच क्षेत्र में संकट पैदा करने के उद्देश्य से यमन में नागरिक ठिकानों पर अमरीकी और ब्रिटिश हमलों से दोनों देशों के हितों के लिए गंभीर परिणाम निकल सकते हैं, जो अपने लक्ष्यों को साधने के लिए हमेशा सैन्य बल का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इस बार अमेरिकी सैन्य लक्ष्य और अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके विरोधियों और प्रतिरोधी संगठनों के लिए आसान लक्ष्य बन गए हैं।
उत्तराखंड की सरकार ने आज मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पेश कर दिया। इस विधेयक के पारित हो जाने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा और उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से शमशाद काजमी।
उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में आज ये विधेयक पेश किया। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही आजादी के बाद उत्तराखंड देश में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सूत्रों के अनुसार मसौदे में 400 से अधिक धाराएं हैं, जिनका उद्देश्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। ज्ञात रहे कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति ने बैठकों, परामर्शों, क्षेत्रों के दौरों और विशेषज्ञों और जनता के साथ बातचीत के बाद मसौदा तैयार किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को दिल्ली में की थी। बताया जाता है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी और शादी की उम्र लड़कियों और लड़कों के लिए 21 साल तय कर दी जाएगी। अभी अन्य धर्मों में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र लागू है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, ऐसा नहीं करने पर 6 महीने जेल की सजा होगी। इस विधेयक में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत में अधिकार देने का प्रस्ताव है। उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है। भाजपा समान नागरिक संहिता कानून लाने पर बहुत पहले से जोर देती रही है, जबकि मुसलमान इसका विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि उनके रीति रिवाज मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का कहना है कि दुनिया भर के मुसलमान कुरान पर अमल करते हैं और यदि यूसीसी बिल कुरान के विरुद्ध नहीं है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कुरान की हिदायत से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यदि ये विधेयक कुरान के विरुद्ध होगा तो हम इसका अवश्य विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल देश को बांटना चाहती है और उसके पास बताने को कुछ भी नहीं है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओ, शमशाद काजमी की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब हम पेश करने जा रहे हैं कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, स्वतंत्रता प्रभात पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, कम ही ऐसा होता है कि कोई पीड़ित राष्ट्र क्रांति के लिए साहस करे, और जो राष्ट्र आंदोलन और क्रांति के लिए कदम बढ़ाते भी हैं तो कम ही ऐसा देखा गया है कि उन्होंने उसे अंजाम तक पहुंचाया हो। और सरकारों के बदलने के अलावा क्रांति के आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं की हिफाजत की हो, लेकिन ईरान की साहसी जनता की शानदार क्रांति, जो वर्तमान की सबसे लोकप्रिय क्रांतियों में से एक है, एकमात्र ऐसी क्रांति है जो 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने आदर्शों को सुरक्षित रखे हुए है।
इस्लामी कला, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के उदय के बाद विभिन्न ऐतिहासिक कालों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वजूद में आई। बड़ी संख्या में अध्ययनकर्ताओं ने अपनी रचनाओं में इस कला का उल्लेख किया और लगभग समान उदाहरणों के जरिए इसके विभिन्न सिद्धांत और परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं।
ईरान उन देशों में से एक है जहां इस्लाम का तेजी से विस्तार हुआ। इस देश की प्राचीन सांस्कृतिक और कलात्मक पृष्ठभूमि के कारण यहां के कलाकारों ने इस्लामी विचारधारा के मुताबिक रचनाओं को प्रस्तुत किया। इसलिए आज यह दावा किया जा सकता है कि इस्लामी कला ईरानी पहचान का एक भाग है और उसने ईरानी सभ्यता की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कुछ अध्ययनकर्ताओं ने इस्लामी कला को एक ऐसी कला बताया है जो इस्लामी और ईश्वरीय विषयों को बयान करती है। इसीलिए इस कला को इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक होना चाहिए ताकि उसे इस्लामी कहा जा सके। दूसरे शब्दों में, धार्मिक कला विभिन्न शैलियों और विभिन्न तरीकों से पवित्रता का एक सौंदर्य अनुभव है और यही धार्मिक कला का सार है। इस तरह की परिभाषा के आधार पर इस्लामी कला लोक और परलोक में श्रेष्ठ विषयों की अभिव्यक्ति का जरिया है। हालांकि इस्लामी कला की परिभाषा की पृष्ठभूमि में ऐसे अध्ययनों और विश्लेषणों के आधार पर यह नतीजा हासिल किया जा सकता है कि यह कला इस्लामी देशों की कला नहीं है। हाँ, इनमें से अधिकांश की रचना मुस्लिम शासकों के दौर में की गई है।
इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि इस्लामी क्रांति ने ऐसे दौर में सफलता हासिल की जब मार्क्सवाद और उदारवाद जैसी धर्म विरोधी और आध्यात्मिक विरोधी विचारधाराओं का डंका बज रहा था। ऐसे समय में इस्लामी क्रांति ने दुनिया को मनुष्य और धर्म के बीच संबंध का एक नया संदेश दिया। उस समय कला के लिए कला जैसे विचार और नारे हाशिए पर डाल दिए गए थे और ईरानी क्रांतिकारी और मुस्लिम समाज और कलाकारों का कोई महत्व नहीं था।
इस्लामी क्रांति की सफलता के प्रारंभिक वर्षों में लोक कला को प्रोत्साहित किया गया और उसे बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ये कला क्रांतिकारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली थी। लोक कला एक ऐसी कला थी जिसने उस समय आधुनिक कला की जगह ली थी। इसमें यथार्थवाद और कभी कभी अभिव्यक्तिवाद शामिल होता था। इस कला ने राजनीतिक विषयों के साथ क्रांतिकारी विषयों को बढ़ावा देने और प्रचारित करने की कोशिश की और आम लोगों ने, विशेष रूप से पीड़ित वर्ग के लिए, ये समझने योग्य थी।
विदेशी संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ ही स्थानीय संस्कृति के सुदृढ़ीकरण का उन वर्षों में ईरानी कला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्थानीय संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए एक और तो इसे सांस्कृतिक क्षति से बचाया और सार्वजनिक संस्कृति के स्तर में वृद्धि की, तो दूसरी ओर ईरानी कला को दुनिया में अनोखी कला बना दिया। उदाहरण के लिए हम ईरानी सिनेमा और उसके आश्चर्यजनक परिवर्तनों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी किसी भी तरह से क्रांति से पहले के वर्षों से तुलना नहीं की जा सकती। विशेषज्ञों के अनुसार सिनेमा की कला पहलवी शासन के जीवन के अंतिम दिनों में मर चुकी थी, लेकिन क्रांति के 40 वर्षों के दौरान उसने इतनी ऊंचाई हासिल की और विकास किया कि न केवल घरेलू स्तर पर क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध सिनेमा का एक उदाहरण बन गई, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी नैतिकता और मानवता के लिए पहचानी जाने लगी।
किसी भी अन्य सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटना की तरह इस्लामी क्रांति के पास भी खुद को प्रकट करने और स्थापित करने के लिए कलात्मक के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्शों को सुरक्षित रखा जा सके। जैसा कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामेनाई का कहना है कि कोई भी विचार और कोई भी क्रांति जो कला के रूप में फिट नहीं बैठती है, वो स्थायी नहीं हो सकती।
बीसवीं सदी की क्रांतियों के इतिहास में कोई आदर्श समाज नहीं था और वे समाजवादी मान्यताओं और आदर्शों पर निर्भर थी, जबकि इस्लामी क्रांति ने अपने भविष्य, अतीत और पहचान को परिभाषित करने के लिए धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस्लामी क्रांति की कला अपने आदर्शों की दृष्टि से अन्य कलाओं की तरह ही थी और क्रांति के शुरुआती वर्षों में ईरानी कलाकारों ने दूसरे देशों के कलाकारों की रचनाओं से मिलती जुलती कलाओं की रचना की।
क्रांति के दौरान कला विद्यालयों के कई छात्र आंदोलन में शामिल हो गए और क्रांति के बाद उन्होंने क्रांतिकारी इस्लामी कला नामक एक कलात्मक आंदोलन की नींव रखी। कलाकारों ने इस समूह की पहली प्रदर्शनी तेहरान में हुसैनी इरशाद में आयोजित की गई। तेहरान के बाद इस प्रदर्शनी के संस्थापक ने ईरान के अन्य शहरों में इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया। 1979 में तेहरान स्थित समकालीन कला संग्रहालय में उनके कार्यों और रचनाओं की एक बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
इराक ईरान युद्ध की शुरुआत के साथ ही कलाकारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और दो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, युद्ध के मोर्चे पर घटने वाली घटनाओं से लोगों को जोड़ना और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरा यह कि शहादत जैसे विश्वासों को प्रतीकात्मक रूप से पेश करना जो युद्ध के मोर्चे को सुंदरता प्रदान करते हैं। इस दौरान क्रांतिकारी कलाकारों ने प्रत्यक्ष रूप से मोर्चे पर होने वाली लड़ाई और खूनी दृश्यों को पेश करने के बजाय प्रतीकात्मक तरीके से संघर्ष और साहस की अवधारणाओं को चित्रित करने का प्रयास किया। इस तरह शहरों की दीवारें उन शहीदों और नायकों की बड़ी बड़ी तस्वीरों से भर गई जो कभी खुद उनके बीच रहते थे। उनकी मौत का दर्दनाक और दुखद विवरण दिए बिना और यह शैली कला के इतिहास में एक मिसाल बन गई।
इस्लामी क्रांति की सफलता के शुरुआती वर्षों में कई मामलों में प्राचीन ईरानी कला के पारंपरिक तत्व और पैटर्न कला के कार्यों में देखे जा सकते हैं। क्रांति के बाद के वर्षों के दौरान ईरानी कलाकार अपनी कलात्मक विरासत को सुरक्षित रखते हुए पश्चिमी कला पर भी एक नजर डालते हैं। इस तरह इस्लामी क्रांति के कलाकारों ने पूरी समझदारी से इस पद्धति को चुनकर एक नए अनुभव के साथ प्रयोग किया और दुनिया की समकालीन कला में एक विशेष स्थान प्राप्त किया।
इस्लामिक क्रांति की एक दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व और उसकी निरंतरता है। क्रांति की जीत के 43 साल के बाद भी यह क्रांति लोगों को प्रभावित कर रही है, इसका कारण क्या है? आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई क्रांति की इस विशेषता को वास्तविकता और सत्य का परिणाम मानते हैं। यह सत्य ही है कि जिसकी वजह से क्रांति मजबूत और स्थिर है। इस्लामिक क्रांति की कला में भी एक निरंतरता है।
इस्लामिक क्रांति की कला मानव जीवन और उसकी जरूरतों और आकांक्षाओं को चित्रित करने के साथ ही इस विशेषता में इस्लामिक क्रांति की भाषा में बनने सक्षम रही है। इस कला ने कार्यों और सामग्री के रूप में इस्लाम और इंसानों पर विशेष ध्यान दिया है और एक आयामी होने की कमी को दूर कर दिया है। आध्यात्मिक विषयों के चित्रण ने कला और कलाकारों को कभी यथार्थवादी विषयों पर ध्यान देने से नहीं रोका, क्योंकि इसके अलावा भी कलाकारों ने वर्तमान दुनिया के मुद्दों पर नजरें डाली हैं और जीवन के सभी पहलुओं के लिए कला का उपयोग किया है।
आखिरी बात यह है कि इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों में से एक कलाकारों का नैतिक और इस्लामी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना है। ईरानी कलाकारों ने अपने समय की परिस्थितियों के मद्देनजर मानवता और मानव समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है और समाज में न्याय, करुणा, आत्मबलिदान, नैतिकता और मानवीय विषयों को पेश किया है। ईरान में इस्लामी शासन की स्थापना के बाद ईरानी कलाकारों ने धीरे धीरे महसूस किया कि इन कार्यों में प्रतिबद्धता से उनके कलात्मक और साहित्यिक मूल्यों को नुकसान नहीं पहुंचता है।
ये बात पूरे विश्वास से कही जा सकती है कि क्रांतिकारी मूल्यों और मानदंडों की दृढ़ता ईरानी जनता के कला और क्रांति से गहरे जुड़ाव का नतीजा है, क्योंकि अगर ये मजबूत रिश्ता नहीं होता तो क्रांति के सभी आयामों का चित्रण नहीं किया जाता और दूसरे राष्ट्रों के लिए इसे प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। इसी वजह से आज ये बात कही जा सकती है कि ईरानी कला और कलाकारों की प्रगति का श्रेय इस्लामी क्रांति को जाता है। इस्लामी क्रांति ने भी कठिन वैश्विक परिस्थितियों और कड़े प्रतिबंधों के दौरान विचार, कलम और कैमरे के जरिए दुनिया के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाई है।
तो दोस्तों, इसी के साथ आशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम अभी आपने सुना, कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको, इस बारे में आप हमें अपने विचार जरूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, parstoday.ir/hi। तो दोस्तों, अब सभा के अंत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी इस सभा का अंतिम कार्यक्रम, जो पवित्र कुरान से संबंधित है। हमारा कार्यक्रम है कुरानी किस्से। तो हमें आप अनुमति दीजिए और सुनिए इस सभा का अंतिम कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम पुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह मुजदला की 1 से लेकर 4 तक की आयतें कब नाजिल हुई थीं। हौले बिनते सालबा अरब की एक सुंदर लड़की थी। वो अपने मकान के प्रांगण में बैठी पुरानी बातों को याद कर रही थी। वो बहुत धनवान लड़की थी और उसका परिवार भी बहुत प्रसिद्ध था और वो बहुत सुंदर भी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसके साथ विवाह के इच्छुक थे। पर जो लोग भी उसकी मंगनी के लिए आते थे उन सबको वो रद्द कर देती थी और बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता को उस जवान के साथ विवाह करने पर राजी कर पाई जिससे वो विवाह करना चाहती थी। उस जवान का नाम औस बिन सामित था।
हौले यह सोच रही थी कि अपनी हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए उसे सारी चीजों की अनदेखी करनी पड़ेगी। बहरहाल हौले का विवाह औस बिन सामित से हो गया और वह उसके साथ जिंदगी गुजारने लगी और महानिश्वर ने उसे 4 बेटे और 1 बेटी प्रदान की। और अब वह उसकी काफी उम्र हो गई थी। वह समय भी आ गया जब उसके चेहरे से जवानी की तरुणाई खत्म हो गई।
एक दिन हौले के पति औस बहुत क्रोध में उससे बोला, तू मेरी माँ की तरह है। हौले डर गई और उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। उसने भय की हालत में अपने पति को देखा। अरब जगत में प्रचलित परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से ये कह देता था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, तो वो उसे छोड़ देता था और उससे अलग हो जाता था। और जिस तरह से अपनी माँ से विवाह हराम है, उसी तरह अपनी पत्नी को हराम समझने लगता था।
बहरहाल औस ने जिस वाक्य का प्रयोग किया था उसका अर्थ यह था कि हौले अब उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई है और यह एक विवाहित महिला के लिए बहुत ही बुरी बात थी। अंततः औस का गुस्सा ठंडा हो गया और उसे अपनी गलती समझ में आई और गुस्से में उसने हौले से जो कहा था उसकी वजह से उसके दिल में हौले से प्रेम कम नहीं हुआ था। वह अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा था और अपनी पत्नी से प्रेम का इजहार किया, परंतु अब उसकी शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसने हौले को हमेशा हमेशा के लिए खुद पर हराम कर लिया था। वह रोकर अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या तुम सच में मेरे लिए हमेशा के लिए हराम हो गई हो? इस पर उसकी पत्नी का दिल भर आया और उसने भराई हुई आवाज में कहा, बेहतर है कि पैगंबर इस्लाम के पास चलते हैं और उनसे इसके बारे में ईश्वरीय आदेश पूछते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। इस पर औस ने कहा, नहीं जाऊंगा। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि इस प्रकार की हालत में मैं किस प्रकार पैगंबर इस्लाम के चेहरे को देखूंगा। इसके बाद हौले पैगंबर इस्लाम की सेवा में पहुंची और उसने सारी बात पैगंबर इस्लाम से बताई और कहा कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है और अब वह शर्मिंदा है। क्या कोई रास्ता है कि हम दोबारा से एक साथ जिंदगी गुजार सकें? इस पर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि महानिश्वर ने इस बारे में कोई आयत नाजिल नहीं की है जिसके आधार पर मैं कोई आदेश दे सकूं। इसके बाद उसने पैगंबर इस्लाम से कहा, अब मेरी उम्र अधिक हो गई है, अब वह मुझे जिहार कर रहा है यानी मुझे तलाक दे रहा है। मैं ईश्वर से शिकायत करूंगी, वह मेरे बच्चों का बाप है। मैं इस बात को पसंद नहीं करती हूं कि वह मेरे बच्चों का पालन पोषण करे। वह बद अखलाक है, वह मेरे बच्चों को बर्बाद कर देगा और अकेले में जिंदगी की गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हूँ। हौले बार बार अपनी बात दोहरा रही थी।
दोस्तों, हौले पैगंबर इस्लाम से कह रही थी कि वो इस समस्या का समाधान ढूंढें। पैगंबर इस्लाम खामोश थे। इस पर हौले आसमान की ओर चेहरा करके बोली, हे ईश्वर, तू मेरी हालत देख रहा है, मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पालनहार मैं मोहताज हूँ, मैं तुझसे मदद मांग रही हूँ, अपने पैगंबर पर आदेश नाजिल करके इस समस्या का समाधान कर। इस बीच पैगम्बर इस्लाम की हालत परिवर्तित हो गई और महान ईश्वर ने आयत नाजिल की और पैगम्बर इस्लाम को ज़िहार की समस्या का समाधान बताया।
इसके कुछ देर के बाद पैगम्बर इस्लाम ने अपना सिर उठाया और होले से फरमाया कि अपने पति को बुलाओ ताकि जो आयत नाजिल हुई है उस पर मैं उसकी तिलावत करूं। महान ईश्वर इन आयतों में कहता है, बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने पति के बारे में आपस से बहस कर रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, और अल्लाह ने आप दोनों की बात सुन ली। बेशक अल्लाह बहुत सुनने और जानने वाला है। जो लोग अपनी औरतों को ज़िहार करते हैं वे उनकी वास्तविक माएँ नहीं होंगी बल्कि उसकी माए नहीं होगी मगर यह कि जिसने उन्हें पैदा किया है, और ये लोग गलत व अप्रिय बात करते हैं, और बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। और जो लोग अपनी पत्नियों को ज़िहार करते हैं और फिर जो कहा उस पर शर्मिंदा होते हैं तो उन्हें दोबारा अपनी पत्नियों से मुलाकात से पहले अल्लाह की राह में एक गुलाम आज़ाद करना चाहिए। यह आदेश है जिसे तुम लोगों को दिया जा रहा है और अल्लाह उससे पूर्णतः अवगत है जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, और जिसके पास गुलाम आज़ाद करने की ताकत न हो तो वह 60 मस्कीनों व फकीरों को खाना खिलाए, और यह ऐसा इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और यह अल्लाह की सीमा है, काफिरों के लिए दर्दनाक दंड है।
दोस्तों, पवित्र कुरान की इन आयतों में ज़िहार समस्या का स्पष्ट रूप से समाधान बयान किया गया है। पैगंबर इस्लाम ने हौले के पति औस बिन सामित से एक गुलाम को आज़ाद करने के लिए कहा। उसके बाद उससे पूछा कि क्या तुम गुलाम को आज़ाद कर सकते हो। इस पर उसने पैगंबर इस्लाम से कहा कि नहीं, मेरे अंदर गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है। तब पैगम्बर इस्लाम ने उससे फरमाया कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या लगातार 60 दिन रोजे रख सकते हो। इस पर उसने कहा कि मुझे कमजोरी है, 2 महीने लगातार रोजे रखना मेरे लिए बहुत कठिन है। इस पर पैगम्बर इस्लाम ने उससे फरमाया, क्या 60 फकीरों व मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो। इस पर उसने कहा कि यह काम भी उसकी क्षमता से बाहर है मगर यह कि आपकी मदद हासिल हो। इसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने उसकी आर्थिक मदद की और पति पत्नी दोनों मिलकर दोबारा एक साथ शांतपूर्ण ढंग से रहने लगे।
ज़िहार का प्रयोग अज्ञानता के काल में पत्नी को तलाक देने के लिए होता था और यह उस जमाने में समाज में एक प्रचलित परंपरा थी, परंतु जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उसने इस कार्य को निषेध घोषित कर दिया और इसे आधारहीन व गलत बात करार दे दिया। पवित्र कुरान के सूरे अहज़ाब की 4 आयत में महान ईश्वर कहता है, अल्लाह ने एक आदमी के अंदर 2 दिल करार नहीं दिया है, और तुम अपनी जिन पत्नियों को ज़िहार करते हो वे तुम्हारी माएँ नहीं हैं। यह तुम्हारी बातें हैं जो तुम अपने मुंह से कहते हो, और अल्लाह हक व सत्य बात को कहता है।
अज्ञानता के काल में बहुत सी चीजें अरब समाज में प्रचलित थी पर इस्लाम धर्म ने आने के बाद उन्हें गलत करार दे दिया, जैसे मुंह बोले लड़के की पत्नी से विवाह। अरब समाज में ये बात आम थी कि अगर कोई इंसान किसी लड़के को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है तो जो मुंह बोला बेटा होता था उसकी पत्नी से मुंह बोला बाप विवाह नहीं कर सकता था, और मुंह बोले बेटे को विरासत में हिस्सा दिया जाता था, और ये परंपरा अरब समाज में घर कर गई थी और किसी के अंदर भी इसके खिलाफ अमल करने की हिम्मत नहीं थी। परंतु महान ईश्वर के आदेश से पैगम्बर इस्लाम ने अपने मुंह बोले बेटे हारिसा की पति से विवाह करके अरबों में व्याप्त गलत परंपरा को खत्म कर दिया। इस पर मुनाफिकों ने पैगम्बर इस्लाम की छवि खराब करने की बहुत कोशिश की परंतु अंत में सबको मुंह की खानी पड़ी। इसी प्रकार इस्लाम धर्म आने से पहले शराब पीना आम था परंतु इस्लाम धर्म ने इसे भी गलत व हराम करार दे दिया।
यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और यह वह कि जो भी गलत परंपराएं अज्ञानी अरबों में व्याप्त थी, ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने आते ही उन सब को एक ही समय में खत्म या हराम कर दे दिया, बल्कि गलत चीजों व परंपराओं को धीरे धीरे उसने हराम करार दिया और खत्म किया। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने गुलामों के क्रय विक्रय को काफी दिनों के बाद खत्म किया, क्योंकि गुलामों की खरीदारी व बिक्री उस समय के अरब समाज में प्रचलित परंपरा थी और इस्लाम ने इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले गुलामों की आजादी को सबाब का काम बताया और उसके बाद गुलामों की आजादी को बहुत से गुनाहों का कफारा करार दिया है। इस समय काफी समय के बाद अरब जगत से गुलामों की खरीदारी व बिक्री समाप्त हुई।
दोस्तों, अरब समाज में जो चीज़ें गलत प्रचलित थीं उनमें से एक सूद का लेन देन था। हालांकि ये अनैतिक बीमारी आज भी समाजों में व्याप्त है, परंतु इस्लाम ने इसे हराम करार दी है। इस्लाम ने न केवल सूद को हराम करार दिया है, बल्कि उसे बहुत बड़ा पाप बताया है। एक बार हिशाम बिन हिकम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सूद के हराम होने के कारण के बारे में पूछा तो इमाम ने फरमाया, अगर सूद हलाल होता तो लोग व्यापार को छोड़ देते और जो चीज उनके लिए लाभदायक है उसे अंजाम न देते। इसी कारण अल्लाह ने सूद को हराम करार दे दिया, ताकि लोग उससे विमुख हो जाएं और हलाल व लाभदायक व्यापार की ओर ध्यान दें।
सूद के हराम होने की एक वजह यह है कि इसका समाज पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग सूद का लेन देन करते हैं उनकी मानवीय भावनाएं कमजोर हो जाती है और उनके दिल सख्त हो जाते हैं। पवित्र कुरान में सूद के हराम होने का उल्लेख कई बार किया गया है। एक व्यक्ति ने इमाम जाफर सादिक अली सलाम से इसके हराम होने के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि अगर सूद को हराम न करार दिया जाता तो लोग नेक काम से पीछे हट जाते। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। Oh.